آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواتین پر مظالم ناقابل معافی ہیں اور قصوروار کو ہرگز نہ بخشا جائے۔ وزیراعظم نے سبھی کو انصاف فراہم کرنے کے مقصد سے عدالتی نظام میں نئی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے کام لینے کو کہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کی غیر قانونی تجارت کے نیٹ ورک کو بے رحمانہ طریقے سے منہدم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لبنان میں قائم دہشت گرد گروپ حزب اللہ اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کی ہیں، اور بھارت کی سرفنگ ٹیم نے پہلی بار 2026 کے ایشیائی کھیل مقابلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواتین کو با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت ملک کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر مظالم ناقابل معافی جرم ہے اور قصوروار کو ہرگز نہ بخشا جائے۔ جناب مودی مہاراشٹر کے شہر جلگاؤں میں منعقدہ ایک تقریب میں 11 لاکھ نئی لکھپتی دیدی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہسپتالوں، اسکولوں، دفتروں اور پولیس نظام جیسے سرکاری اداروں کو جواب دہ بنایا جائے اور اس سلسلے میں کوئی لاپرواہی ناقابل معافی ہے۔
مہیلاؤں کے خلاف اپرادھ اکشمیہ پاپ ہے، دوشی کوئی بھی ہو وہ بچنا نہیں چاہیے، اس کو کسی بھی روپ میں مدد کرنے والے بچنے نہیں چاہیے۔ اسپتال ہو، اسکول ہو، دفتر ہو یا پھر پولیس ویوستھا، جس بھی استر پر لاپرواہی ہوتی ہے سب کا حساب ہونا چاہیے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ سماج اور سرکار کے طور پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری خواتین کی زندگی اور وقار کی حفاظت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے لکھپتی دیدیز کا بھی خیر مقدم کیا اور ان سے ان کے کاروبار کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت خواتین کے لیے وہ سبھی شعبے کھولنے کی جانب کام کر رہی ہے جو ابھی تک ان کے لیے ممنوع تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی کو انصاف فراہم کرنے کے مقصد سے عدالتی نظام میں نئی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے کام لینے کو کہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انصاف کی فراہمی کو آسان بنانا ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، اگرچہ موجودہ طور طریقوں سے اس مقصد میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جودھ پور میں راجستھان ہائی کورٹ کی پلاٹینم جوبلی کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے فرسودہ قوانین میں ترامیم کیے جانے سمیت سیدھے سیدھے انصاف کی فراہمی کی جانب ملک کی تاریخی پیش رفت کا خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے فوجداری قوانین میں حالیہ اصلاحات کو لازمی قرار دیا اور کہا کہ یہ تبدیلیاں ملک کی بڑھتی ہوئی امنگوں اور جدید نظام کی ضرورت کے مطابق کی گئی ہیں تاکہ ایک نئے بھارت کے ویژن میں مدد دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک کی 18,000 سے زیادہ عدالتوں کا کام کاج کمپیوٹر کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کی خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔
آج دیش میں کم خرچیلے اور تورت نرنوں کے لیے آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ میکانزم بہت اہم راستہ بن رہا ہے۔ ویکلپک ڈسپیوٹ میکانزم کی یہ ویوستھا دیش میں ایز آف لیونگ کے ساتھ ہی ایز آف جسٹس کو بھی بڑھاوا دے گی۔ قانونوں میں بدلاؤ کر کے نئے پراودھان جوڑ کر سرکار نے اس دشا میں کئی قدم اٹھائے ہیں۔ نیا پالیکا کے سہیوگ سے یہ ویوستھائیں اور زیادہ سشکت ہوگی۔
جناب مودی نے تنازعات کو حل کرنے کے متبادل نظام کی بھی وکالت کی، جس کے بارے میں ان کا یقین ہے کہ اس سے زندگی اور انصاف کی فراہمی میں سہولت پیدا ہوگی۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم نے راجستھان ہائی کورٹ میوزیم کا افتتاح کیا اور ٹوائلٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے خلائی شعبے میں کی گئی ترقی کی ستائش کی۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ خلائی شعبے میں اصلاحات سے ملک کے نوجوانوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ وزیر اعظم نے اس مہینے کی 23 تاریخ کو خلا سے متعلق قومی دن کی اہمیت پر زور دیا، جو چندریان 3 مشن کی کامیابی کے سلسلے میں منایا گیا۔
21ویں صدی کے بھارت میں کتنا ہی کچھ ایسا ہو رہا ہے جو وکست بھارت کی نیو مضبوط کر رہا ہے۔ جیسے اس 23 اگست کو ہی ہم سب دیش واسیوں نے پہلا نیشنل اسپیس ڈے منایا۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ سب نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہوگا۔ एक बार फिर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। देश के युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से भी काफी फायदा हुआ है।
मन की बात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम के अरकान के साथ गुफ्तगू भी की, जिसे IIT मद्रास के साबिक तलबा ने लॉन्च किया था। वजीर आजम ने कहा कि खला से मुतालिक इको निजाम फाल हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि लाल किले से इस साल उन्होंने गैर सियासी पस मंजर वाले 1,00,000 नौजवानों पर जोर दिया था कि वो सियासी निजाम के साथ मुंसलिक हों। उन्होंने कहा कि इस पर जबरदस्त जोश व खरोश देखने में आया है और बड़ी तादाद में नौजवान सियासत में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गैर सियासी पस मंजर वाले नौजवानों के सियासत में शामिल होने से मुल्क के मुस्तकबिल में यकसर तब्दीली आएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। उम्र दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मुनशियात की रोकथाम के ब्यूरो के इलाकाई यूनिट ऑफिस का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखला की सदारत में छत्तीसगढ़ में मुनशियात की सूरत हाल से मुतालिक एक जायजा मीटिंग भी हुई। इस मौके पर जनाब शाह ने कहा कि 2047 यानी भारत की आजादी के 100 साल मुकम्मल होने तक मुल्क से मुनशियात का खात्मा करने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अज्म अब हरेक हम वतन को अजीज होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुनशियात का गैर कानूनी कारोबार मुल्क की सलामती के मुनाफी है।
नशामुक्त भारत का संकल्प समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के संकल्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। नारकोटिक्स केवल भारत की समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या। अगर ये लड़ाई हम अभी शिद्दत के साथ लड़े तो लड़ाई हम जीत सकते हैं। भारत में नारकोटिक्स का दूषण राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नारकोटिक्स फ्री बनाए, नशा मुक्त बनाए।
उन्होंने कहा कि इससे हासिल की गई रकम से दहशतगर्दी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी को बढ़ावा दिया जाता है और मुल्क की मईशत कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि मुनशियात के गैर कानूनी कारोबार के नेटवर्क को सख्ती से तबाह किए जाने की जरूरत है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत इसके खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त न करने वाली पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में जारी है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के लिए नुमाइंदों के नामों की फहरिस्त तैयार करना है। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा, मरकजी वजीर अमित शाह, जितेंद्र सिंह और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी शहरियों और बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा है कि खुशी का ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों के तहत खुद को वक्फ करने का हौसला देता है। उन्होंने हरेक से जोर देकर कहा कि वह भगवान श्री कृष्ण की तालीमात पर अमल करें और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का अज़्म करें। अपने पैगाम में जनाब धनखड़ ने कहा है कि जन्माष्टमी का दिन बेहद रूहानी अहमियत का हामिल है, जो भगवान कृष्ण की पैदाइश से मुंसलिक है, जो खुलूस, इल्म, फरासत और पारसाई की अलामत है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अमरीका भारत सिविल न्यूक्लियाई कॉमर्स के मौजू पर दो तरफा मीटिंग की सदारत की। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि मीटिंग में साइंस, टेक्नोलॉजी और सफाई सुथराई जैसे अहम शोबों समेत दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तआवुन को उजागर किया गया। मीटिंग के दौरान डॉ सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन से एक भारतीय खलाबाज बैन अल-क़वामी खलाई स्टेशन में शामिल होने के लिए तैयार है, जो भारत और अमरीका के दरमियान खलाई तआवुन में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। मगरबी बंगाल में मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने एक जेर तरबियत खातून डॉक्टर की आबरू रेजी और कत्ल केस के तनाजुर में कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माली बेजाब्तगियों के इल्जाम के सिलसिले में आज सुबह 15 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। CBI की एक टीम मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष से उनकी रिहायशगाह पर पूछताछ कर रही है, जबकि CBI की एक और टीम मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा CBI की दीगर टीमें अस्पताल के साबिक सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर देबाशीष सोम और वाइस प्रिंसिपल डॉ संजय वशिष्ठ नीज मेडिकल सप्लायर बिपल सिंह से उनकी रिहायशगाहों पर पूछताछ कर रही है। तेलंगाना के वजीराला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अगले तालीमी साल में खेलकूद की एक यूनिवर्सिटी कायम करेगी जिसका मकसद खेलकूद में हिस्सा लेने वाले ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा करना है जो ओलंपिक तमगे हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एथलीट्स को तरबियत देने के लिए बैन अल-अक़वामी कोचिज की खिदमात हासिल करेगी। वजीर आला आज हैदराबाद में गोचीबावली स्टेडियम में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की एनएमडीसी हैदराबाद मैराथन की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मंसूबा यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक है जो मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए हाल ही में कायम की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनूबी कोरिया के अपने हालिया दौरे में सियोल में कोरिया की खेलकूद से मुतालिक कौमी यूनिवर्सिटी का दौरा किया था जहां एथलीट्स की ओलंपिक तमगे जीतने की सलाहियतों में इजाफा किया जाता है। त्रिपुरा में एनडीआरएफ का अमला सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत का काम अंजाम दे रहा है। रियासत में सैलाब के पांचवें दिन भी एनडीआरएफ की 5 बटालियनें जनूबी त्रिपुरा और सिपाहीजाला जिलों में बचाव और राहत का काम अंजाम दे रही हैं। ये जिले सैलाब से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। आज के लिए शदीद बारिश की पेशगोई की गई थी लेकिन रियासत के किसी इलाके से शदीद बारिश की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अलबत्ता मिट्टी के कटाव और मुश्किल गुजार रास्तों के बारे में मालूमात की कमी के सबब एनडीआरएफ को फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। अगरतला से हमारे नमनिगार की रिपोर्ट।
सिपाहीजाला जिले में सोनामुरा डिवीजन के तहत बटाली और गरनताली गांवों में लोगों की हालत अबतर होती जा रही है क्योंकि गोमती और रुद्रसागर झीलों में पानी की सतह लगातार बढ़ रही है। सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया है और लोगों के पास घरों को खाली करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत सी तंजीमें लोगों को मदद और राहत फराहम करने के लिए आगे आई हैं। ऐसी ही एक तंजीम कुवैत प्रवासी फाउंडेशन है जो सैलाब से मुतासर लोगों को मदद फराहम कर रही है। ये लोग यहां खाने की खुश चीजें फराहम कर रहे हैं। अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
मरकजी वजीर चिराग पासवान को आज फिर से 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का सदर चुन लिया गया। ये फैसला रांची में पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इत्तेफाकी राय से किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF ने मरकजी सरकार की जानिब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी दिए जाने का खैरमकदम किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिवा गोपाल मिश्र ने इस बात को उजागर किया कि इस स्कीम से तकरीबन 23 लाख सरकारी मुलाजिमीन को फायदा होगा। नासा के 2 खलानवर्द सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के जरिए कुर्रे अर्ज पर वापस आएंगे। असल में तो ये लोग 8 दिन के मिशन पर थे लेकिन इन्हें तकरीबन 8 महीने खला में ही गुजारने पड़ेंगे क्योंकि इनके बोइंग स्टार लाइनर तैयारे में कुछ खराबियां पैदा हो गई हैं। मगरबी एशिया में कशीदगी में खातिरखा इजाफे के तनाजुर में हिजबुल्ला ने इसराइल के खलाई जवाबी हमला किया जो हिजबुल्ला के आला सतह के फौजी लीडर फवाद शुक्र के कत्ल के इंतकाम का पहला मरहला है। आज सुबह हमला 30 जुलाई को बैरूत के जनूबी इलाके में शकूर की हलाकत के 3 हफ्ते बाद हुआ है। इसी दौरान इसराइल ने ऐलान किया है कि उसने हिजबुल्ला के हमले से पहले 100 जंगी तैयारों का इस्तेमाल करके पेशबंदी के तौर पर लबनान में हमला किया। इसराइली फौज ने कहा है कि उसे पता चला कि इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले की तैयारियां हो रही हैं जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एक बड़ी कामयाबी के तहत भारत की सर्फिंग टीम ने जापान के आईची नगोया में 2026 के एशियाई खेल मुकाबलों में पहली बार जगह बना ली है। मर्दों और खवातीन दोनों की टीमों ने मालदीव में मुनाकदा एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में यह मकाम हासिल किया है। इन टीमों को दर्जाबंदी की बुनियाद पर इन मुकाबलों में शामिल किया गया है। सर्फिंग मुकाबले समंदर की लहरों पर बोर्ड पर सवारी करने के मुकाबले होते हैं जिनमें एथलीट्स अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़वातीन पर मज़ालिम नाक़ाबिले माफ़ी गुनाह है और कसूरवार को हरगिज़ न बख्शा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सभी को इंसाफ फराहम करने के मकसद से अदालती निज़ाम में नई टेक्नोलॉजी और इख्तिरात से काम लेने को कहा है। वज़ीर-ए-दाख़िला अमित शाह ने मुनशियात की गैर कानूनी तिजारत के नेटवर्क को बेरहमाना तरीके से मुनदिम करने की जरूरत पर जोर दिया है। लबनान में कायम दहशतगर्द ग्रुप हिजबुल्लाह और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां शुरू की हैं। और भारत की सर्फिंग टीम ने पहली बार 2026 के एशियाई खेल मुकाबलों में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।